रात के क्लास चल रहा था, तीन ग्यारह 1966 चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी याद करते करते सतो प्रधान बन जाए तो हम यहाँ तमो प्रधान दुनिया में रहें क्यों। दुखदाई दुनिया में क्यों रहें। आत्मा भागेगी, ये ताम से शरीर छोड़ करके तो भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे और बातों को छोड़ दो, इनके द्वारा कहते हैं कि किसके द्वारा कहें। इनके माने जिनमें प्रवेश करते हैं, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। इनके द्वारा कहते हैं कि किसके द्वारा कहें। उनको कहना तो है ना, कोई के द्वारा किनको। भगवान बाप शिव को कोई के द्वारा तो कहना है ना। क्यों, क्योंकि जो भगवान बाप है निराकार है और सदा सर्वदा निराकार है। उनको अपना साकार शरीर दो, है ही नहीं। तो समझाने की वो जरूरत, वो फोर्स इन बातों में जाए तो बिल्कुल ही कोई खिंच खिंच कर नहीं सकते। किन बातों में जरूरत जाए, कि भगवान तो सदा सर्वदा निराकार है, इस साकार दुनिया में आता है, निराकारी धाम को छोड़ करके आता है। साकार शरीर में प्रवेश करता है तो भी सदा निराकारी स्टेज में रहता है। यह साकार हो जाता है, है? निराकारी स्टेज में रहता है, साकार में उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। और जो भी धर्म पिताए हैं उनकी आत्माएं इस साकार दुनिया में आती हैं, तो संग के रंग में आ जाती हैं। और सुप्रीम सोल बाप कभी भी किसी के संग के रंग में नहीं आता, अटैचमेंट में नहीं आता। इसलिए उसका कोई पाप और पुण्य नहीं बनता है। ऐसे समझा रहे हैं तो कोई भी प्रश्न उत्तर पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता में ये अक्षर है मनमना भव। और नाम दे दिया है कृष्ण का, मत मन मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, मन कहो दिल कहो बात तो एक ही है। अब मैं तो अमन हूं, कि मेरा मन है, मैं तो असोचता हूं। मन का काम है सोच विचार करना, संकल्प विकल्प करना। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूं। तो त्रिकालदर्शी हूं, मुझे सोच विचार करने की क्या दरकार, किसे? शिव बाप को। तो गीता में जो अक्षर है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव बाप की आत्मा ने बोला, आत्माओं के बाप ने बोला, परंतु उसको तो मन है ही नहीं अपना, तो फिर क्यों कहा गीता में मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अपने अपने संकल्प विकल्पों को छोड़ दे, तो क्या मतलब हुआ इसका? मेरा मन है ही नहीं, मैं अमन हूं, मैं असोचता हूं, फिर मन में समाने का क्या मतलब है? है? हाँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं अव्वल नंबर में, वो ही मेरा मन है, वो ही मेरा दिल है। जिसके पीछे पीछे मैं अपने निराकार धाम को छोड़ करके भागता हूं, तो पीछे पीछे भागने वाला आशिक है या माशूक है? आशिक है। किसका आशिक है? जिसके ऊपर दिल है। और माशूक कौन हुआ है? जिसके पीछे भागा वो माशूक हुआ। दुनिया में भी क्या होता है, आशिक माशूक के पीछे भागता है, या मासूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक मासूक के पीछे भागता है। तो जिसके पीछे भागता है वो ही मेरा दिल है। उसके संकल्पों में समा जा, मत मना भव, अर्थात मेरे दिल में समा जा। तो जिसके मन में समाने के लिए बोला वो इस संसार में किस नाम से प्रसिद्ध है? कोई नाम रूप है या नहीं है? क्या है? ब्रह्मा नाम रूप है। तो ब्रह्मा का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए है? ब्रह्मा का नाम तो मेरे साम नाम के साथ नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का भी नहीं जोड़ा जाता, कोई भी मनुष्य मात्र का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जाता। न 33 करोड़ देवताओं में कोई देवता है जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाए। किसका नाम जोड़ा जाता है? एकमात्र आत्मा है जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। कहते ही हैं शिव शंकर भोले भाले, तो बड़ा कौन छोटा कौन है? ज्यादा पावरफुल कौन? आशिक ज्यादा पावरफुल हुआ या मासूक ज्यादा पावरफुल हुआ? क्यों? आशिक पुरुष होता है मोस्टली या स्त्री होती है? तन से, मन से, धन से, सब प्रकार की शक्तियों से पुरुष ज्यादा पावरफुल है, होता है या स्त्री चोला ज्यादा पावरफुल होता है? है पुरुष चोला ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों है? क्योंकि पुरुष बीज है और स्त्री आधार है। बीज पावरफुल होता है ना, जो पुरुष रूप बीज पावरफुल है वो कहता है मेरे मन में समा जा। ये नहीं कहता है मेरे में समा जा है, मेरे में समा जा अगर कहे तो क्या अंतर पड़ेगा है? है मेरे में समा जा तो मैं तो 5000 साल कहाँ पड़ा रहता हूँ? परमधाम में पड़ा रहता हूँ। तो जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं मेरे में समा जाएंगी तो ये मेरी जो दुकान है शस्य रूपी, चलेगी है नहीं चलेगी? इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा जो दिल है मुझको कहा जाता है दिल वाला बाप। कैसा बाप? दिल वाला बाप। तो मेरे दिल में समा जा अर्थात जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है वो मेरा अव्वलंबर दिल है। मन है उसी के मन के संकल्पों में समा जा। उसके मन का एवरलास्टिंग संकल्प क्या है लक्ष्य क्या है? है अरे चित्रों में क्या दिखाते हैं? है नरसिंह नारायण शंकर के चित्र में जो चरित्र देखने में आता है उसमें मोस्टली क्या दिखाते हैं? है याद में बैठा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा जो चित्र मिलते हैं किस अवस्था के मिलते हैं? याद में बैठे हुए मिलते हैं। तो किसकी याद करता है? जिसकी याद करता है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है ना। तो साबित होता है कि वो ऊंचे ते ऊंचे नहीं है। कौन? शंकर है। जो ऊंचे ते ऊंचे है उसी किसी की याद करने की क्या दरकार है? दरकार है। भक्त हनुमान को याद करता है तो हनुमान को भगवान मानता है ना, ऊंचा मानता है ना। हनुमान राम को याद करता है तो हनुमान के लिए भगवान कौन हुआ? राम। राम शंकर को याद करता है। शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। और शंकर किसको याद करता है? जरूर अपने से ऊंचे को याद करता है। शंकर को महादेव कहा जाता है, देवताओं में बड़ा देव। और भगवान आकर के क्या करता है? है मनुष्य को देवता बनाता है, और देवताओं में बड़ा महादेव कहा जाता है। तो देवताओं में जो बड़ा है जरूर त्रिदेवों में भी बड़ा होगा, अष्टदेवों में भी बड़ा होगा। और जो बड़ा होता है उसका फर्नीचर बड़ा ही होगा ना। जो भी धर्म पिताएं आते हैं आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से, वो नंबर वार बड़ा पद पाने वालों में ही प्रवेश करते होंगे। तो सुप्रीम सोल बाप भी इस मनुष्य सृष्टि का जो बड़े से बड़ा बाप है, जिसे सब धर्मों में मान्यता है, हिंदुओं में उसको आदिदेव कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। इस्लामियों मुसलमानों में आदम कहा जाता है। क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है। देखो उस सृष्टि के आदि पुरुष के नाम की कितनी समानता है। सभी उस आदि पुरुष को मानते हैं। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे हुआ ना। तो मैं ऊंचे से ऊंचे देवता में प्रवेश करता हूं और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य से अगर देवता बनना है तो कैसा पुरुषार्थ करना है? है जैसा बड़े से बड़ा देवता पुरुषार्थ करता है वो ही पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ? इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियों से भी मन प्रबल है। मन ग्यारहवीं इंद्रिय है, लेकिन इंद्रियों से भी जो मन प्रबल है उस मन का भी कोई कंट्रोलर है या नहीं है? कौन? बुद्धि, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, त्रिनेत्री भी कहा जाता है। तो वो त्रिनेत्री कौन है? है, त्रिनेत्री भगवान है। यह त्रिनेत्री कोई देवता है, है? भगवान को तीन नेत्र होते हैं, है? एक ही नेत्र होता है या तीन नेत्र होते हैं, है? भगवान को तो एक ही नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। वो शिव नेत्र हाथ पांव वाले, इंद्रियों वाले मनुष्यों में से कौन सा मनुष्य है जिसको शिव नेत्र दिखाते हैं? शंकर। तो मनुष्यों में वो बुद्धिमान है, बुद्धि में श्रेष्ठ है, जिसको गीता में कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों में कौन सा नर है जो बुद्धिमान है? अर्जुन, सदभाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला। तो जो ज्ञान धन की कमाई करने वाला है, वो ज्ञान धन देने वाला कौन है? कमाई करने वाला है, इसका मतलब उसके पास कमाई धन की नहीं है, तब तो कमाई कर रहा है। पहले से वो ज्ञान धन है उसके पास नहीं है, ज्ञान धन नहीं है, इसलिए ज्ञान धन की कमाई करने वाला अर्जुन है। अर्जन करना माने कमाना। परंतु उसे ज्ञान धन देने वाला कौन है? अर्जुन को जो गीता ज्ञान देने वाला है वो ही भगवान है। क्या है? भगवान। उसी को कहा जाता है बड़े से बड़ा धन, वसु। शास्त्रों में नाम दिया है वसुदेव। क्या नाम दिया है? वसुदेव। और उसका बच्चा वासुदेव, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। विष्णु का फॉलोअर वैष्णव। ऐसे ही वसुदेव का बच्चा वासुदेव। तो गीता में मनमना भव अक्षर तो है, परंतु नाम कृष्ण का दे दिया है। क्या? गीता में मुख पृष्ठ पर चित्र दिखाते हैं, अर्जुन अपने शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है और उस रथ की लगाम भगवान के हाथ में है। भगवान किसको दिखाई दिया? कृष्ण को दिखाई दिया। अरे कृष्ण का अर्थ क्या है? आकृष्ट करने वाला। खींचने वाला, सांप की बुद्धि को खींच लेता है, सांप की बुद्धि को मोड़ देता है। क्या करता है? सब की बुद्धि को मोड़ देता है। नरेंद्र मोदी क्या करता है? है? कितने भारतवासियों की बुद्धि को मोड़ दिया। नाम रख दिया नरेंद्र, नरों का नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। अब वो तो हद के मनुष्यों का राजा है, भारत के मनुष्य भारतवासी हद के हुए या बेहद सारी सृष्टि के हुए? हद के मनुष्यों का राजा। और भगवान जिसकी लगाम इंद्रियों की अपने बुद्धि रूपी हाथ में लेते हैं, वो बेहद मनुष्य सृष्टि का राजा है। क्या? कंट्रोलर है। मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ की, सब की बुद्धि को मोड़ करके अपनी ओर आकर्षित करता है। जाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है? है? शंकर बैठा हुआ है। क्या दिखाते हैं वहां चित्र में? क्या दिखाया है? सभी आत्माएं खिंच करके शंकर की ओर से होते हुए परमधाम जा रही हैं। खींचने वाला कौन? आकर्षित करने वाला कौन है? शंकर। और नाम दे दिया है किसका? नाम दे दिया है कृष्ण का। अरे कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। वो बच्चा राजयोग सिखाएगा गीता का? राजयोग सिखाने वाला राज को जानने वाला होना चाहिए या ज्ञानी होना चाहिए? है? राज को जानने वाला होना चाहिए। कृष्ण की तो पूजा भी बच्चे के रूप में होती है। किस अगेन के रूप में होती है? है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं हो सकता। गीता पति भगवान कहा जाता है, गीता माता कही जाती है, तो कोई होना चाहिए ना गीता माता। कागज के पत्तों का बना हुआ ग्रंथ माता होती है क्या? होती है? जैसे कागज के पत्तों का ग्रंथ माता नहीं हो सकता, ऐसे ही जितने धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, वो कोई कागज के पत्ते नहीं हैं। जरूर कोई निमित्त मात्र आत्मा है, जिसका आधार धर्म पिता लीता है। क्या माता का आधार कौन लेता है? पिता लेता है। तो जिस पिता ने, जिस आत्मा ने ज्ञान की गीता माता का आधार लिया, वो गीता माता आधार मूर्त हो गई। वो आधार मूर्त गीता माता और वो पिता हो गया। परम पुरुष, परम पुरुष और परम माता, दोनों का मेल है एक ही पर्सनालिटी में। यह पर्सनालिटी व्यक्तित्व अलग अलग है, एक ही शख्सियत है ना। उस एक के लिए गीता में गायन है, शास्त्रों में भी गायन है, त्वमेव माता क्या पिता त्वमेव, त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है, दो या ज्यादा को नहीं कहा जाता। त्वम माने तू, तू ही मेरी माता है और तू ही एक मेरा पिता है। चित्र भी कोई दिखाते हैं, उस एक व्यक्तित्व का चरित्र करने वाला कोई चित्र भी दिखाते हैं, है? अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री रूप। पुरुष जल्दी कन्वर्ट होते हैं या स्त्रियों को जल्दी बरगा लाया जा सकता है? हाँ? कौन जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं? बहलाने फुसलाने में कौन जल्दी आता है? है? कमजोर आता है या पावरफुल आता है? देखो, भारत को मातृ देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? मातृ देश। तो भारत मातृ देश क्यों कहा जाता है? और देशों को तो मातृ देश नहीं कहते, कोई कारण होगा। क्या कारण है? है? क्योंकि भारत ही देश ऐसा है जहाँ की मनुष्य आत्माएं और धर्मों में, हिस्ट्री में कन्वर्ट होती रही है, बरगलावे में आती रही है। हिस्ट्री की सच्ची बात है या झूठी बात है? है? झूठी बात है, सच्ची बात है, हिस्ट्री की बात है कि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के बरगलावे में आ जाते हैं। तो कमजोर आत्माएं हैं तब बरगलावे में आ जाते हैं, या पावरफुल आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं। क्यों कमजोर आत्माएं हैं? अरे कोई कारण होगा? अरे क्योंकि बहुत जन्म लेते 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 द्वैतवादी द्वापर युग में जब आती हैं तो कमजोर हो जाती हैं। बहुत जन्म देवताओं ने लिए भारत में, भारत ही देव भूमि कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो वो देश के वासी देवताओं के रूप में अनेक जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता में राम कृष्ण जैसे देवताओं के भूमि में जन्म लेते लेते दैवी सुख भोगते भोगते सुख भोगते भोगते कमजोर होती जाती हैं वो आत्माएं। क्यों? देवताएं भी कमजोर हो जाते हैं, हैं? हाँ, सुख इंद्रियों से ही भोगा जाता है कि बिना इंद्रियों के भोगा जाता है? इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। ज्ञान इंद्रियां उच्च कोटि की मानी जाती है और ऊंची होती भी है, और कर्म इंद्रियां नीचे होती है, उच्च कोटि की, इसलिए कि ज्ञान इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है उससे आत्माएं धीरे 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 करके नीचे उतरती है। उनका सुख दीर्घ काल का होता है, और जो कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं उनका सुख क्षणभंगुर होता है, क्षणभंगुर होता जाता है, या दीर्घकाल का सुख होता है जो इंद्रियों से सुख भोगते हैं, क्षणभंगुर सुख होता जाता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि देवताएं नीचे नहीं गिरते हैं, देवताएं भी इंद्रियों से सुख भोगते भोगते कमजोर होते जाते हैं। वो देव आत्माएं जब द्वैतवादी युग में आते हैं क्योंकि देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरे को, एक राजा को मानते हैं, एक भाषा जानते हैं, एक कुल होता है, एक राज्य होता है, तो अद्वैत हुए या द्वैतवादी हुए? अद्वैत हुए। वो अद्वैत देवताएं नीचे भी गिरते हैं। आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, क्षरित होती जाती है। गीता में भी लिखा है दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और अक्षर। छाव माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाला, जो कभी भी क्षरित नहीं होता, नीचे नहीं गिरता, पतित नहीं बनता, वो है भगवान। एकमात्र एक ही आत्मा है जो कभी भी क्षरित नहीं होती, और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब क्षर है, पतित होने वाली है, क्षीण होने वाली है, भले देवताएं क्यों न हो। अरे देवताएं तो छोड़ो, देवताओं का मुखिया महादेव ही क्यों न हो, वो भी चरित होता होगा या नहीं होता होगा, वो भी चरित होता। तो देखो देव आत्माएं चरित होते होते सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वैतवादी द्वापर युग में जब आती है, तो कारण क्या बनता है? कि द्वैतवादी युग में आ जाती है, है? क्योंकि ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं इस शक्ति पर आने लगते हैं, दूसरा धर्म स्थापन करते हैं। पहले तो सतयुग त्रेता में एक ही देवता धर्म था, फिर क्या हुआ द्वापर युग में दूसरे दूसरे धर्म आने शुरू हो गए। दो धर्म हुए, दो दो प्रकार की धारणाएं हुई, तो दूसरे दूसरे राज्य स्थापन होने लगे। दो राज्य हो गए, दो धर्म हो गए, दो कुल हो गए, दो मतें हो गईं, दो से चार, चार से आठ, वृद्धि होती जाती है। इसलिए द्वैतवादी युग कहा जाता है द्वापर। देवताएं जब द्वापर में आते हैं तो कमजोर आत्माएं हो गई, अनेक जन्म सुख भोगते भोगते या पावरफुल आत्माएं हुई, कमजोर हो गई। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं द्वापर युग से, वो परम धाम से आती हैं, ऊंचे धाम से, भगवान के धाम से, तो पावरफुल होंगी या कमजोर होंगी? जो भगवान का धाम है, भगवान ऊंचे धाम का वासी है। ऊंचा धाम क्यों? ऊंचे से ऊंचा धाम है क्योंकि उस धाम में जो रहते हैं वो नीचे नहीं गिरते, गिरते हैं? नहीं गिरते। तो वो आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं, तो पावरफुल आत्माएं होती हैं या कमजोर होती है? पावरफुल आत्माएं होती हैं। चाहे वो इब्राहिम आए हो, बुद्ध आए हो, क्राइस्ट आए हो, कोई भी धर्म पिताएं आते हैं। वो आत्माएं, उनको अपना कर्म बंधन होता है कि पवित्र धाम से आती हैं तो पवित्र होती हैं। पवित्र आत्माओं का कोई कर्म बंधन नहीं होता, इसलिए उनको अपना देह का बंधन नहीं लग सकता। गर्भ में प्रवेश नहीं हो सकती, गर्भ की यातनाएं नहीं भोग सकती, इसलिए वो प्रवेश करती है। जैसे ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता कौन, अल्लाह बल्दीन जिसे कहा जाता है, वो कौन है? है सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल इस सृष्टि की सबसे कमजोर आत्मा में प्रवेश करेगा या पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा? पावरफुल देवात्मा में है। पतित तन में आता है, पतितम कामी काटे में आता है। ऐसे ही और भी धर्म पिताएं द्वापर युग से जब आते हैं तो उस समय देवता धर्म की जो आत्माएं सुख भोगते भोगते बहुत नीचे गिर जाती हैं, उसी में प्रवेश करता है। जैसे क्राइस्ट आता है तो क्राइस्ट जीसस में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका पहले नाम क्या होता है? जीसस। प्रवेश करने के बाद उसका नाम पड़ता है क्राइस्ट। ऐसे ही जो द्वापर के ठेठ आदि में आने वाला इस्लाम धर्म है, उसका धर्म पिता इब्राहिम, जिसमें प्रवेश करता है वो देवता धर्म की सबसे कमजोर आत्मा होती है। लेकिन आधार मूर्त होती है, इब्राहिम का आधार बनती है या पिता होती है? आधार मूर्त आत्मा। उस आधार मूर्त आत्मा को भी कोई जन्म देने वाला होगा ना, है? वो रचयिता हुआ या रचना हुआ? रचयिता। रचयिता में ज्यादा पावर होती है या रचना में ज्यादा पावर होती है? तो इब्राहिम का जो आधार मूर्त देव आत्मा है, उसको जन्म देने वाला जो बीज बाप है, वो ज्यादा पावरफुल हुआ। आत्मा तो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होता है वो ज्यादा नीचे भी गिरता है या नहीं गिरता है? है? लुंजुम पुंजुम होगा, इंद्रियां भी लुंजुम पुंजुम होंगी, तो ज्यादा सुख भोगेंगी या कम सुख भोगेंगी? कम सुख भोगेंगी। मजबूत होगा, इंद्रियां पावरफुल होंगी तो सुख भी ज्यादा भोगेगा। ज्यादा सुख भोगेगा, ज्यादा उत्तेजना में आएगा तो ज्यादा डिस्चार्ज होगा या कम डिस्चार्ज होगा? शक्ति ज्यादा क्षीण होगी या कम क्षीण होगी? तो बात है इस्लाम धर्म में आधार मूर्त को जन्म देने वाले बाप की। वो आत्मा इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, जैसे आधारभूत कन्वर्ट हो गया, इब्राहिम ने प्रवेश किया पावरफुल आत्मा ने और उसको अपनी माता बना लिया, आधार बनाया ना इस्लाम धर्म का बीज बोने के लिए। तो जो आधार मूर्त का भी बाप है वो बड़ा देवता होगा, आधार मूर्त से भी बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा देवता होता है। इस्लाम धर्म का सात आर बीज और इस्लाम धर्म की वो सात आर माता जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, दोनों ही सबसे जास्ती उस समय के एक कमजोर आत्मा क्यों बन जाती है? कोई कारण होगा कि नहीं होगा? है हाँ, कारण ये बनता है कि जो सच्ची रूपी ड्रामा है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार सीन का ड्रामा, वो ड्रामा पूरा होने के बाद कलयुग के अंत में इस सत्य रूपी रंगमंच का डायरेक्टर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आ जाता है। नई सृष्टि रचने के लिए कलयुग को बदल करके सतयुग बनाने के लिए, दुख की दुनिया को बदल करके सुख की दुनिया को बनाने के लिए आ जाता है। तो आएगा सच्ची रूपी रंगमंच का डायरेक्टर आएगा तो जो इस सृष्टि के 500-700 करोड़ पात्र हैं, है ना पात्रधारी आत्माएं, उन पात्रधारियों की शूटिंग कराएगा या नहीं कराएगा? ड्रामा की रिहर्सल कराता है, क्योंकि जो भी पात्रधारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो चारों युगों में सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती हैं, ठीक ठाक ज्ञानी बन जाती है। और अपने पार्ट को बिल्कुल भूल जाती हैं। सुप्रीम सोल डायरेक्टर के रूप में पहले पहले पर्दे के पीछे रहकर गुप्त पार्ट बजाता है और पार्टधारियों की रिहर्सल कराता है, बार बार रिहर्सल कराता है। रिहर्सल एक बार होती है या बार बार होती है? बार बार रिहर्सल कराता है। उस रिहर्सल के टाइम पर कोई होशियार पार्टधारी होते हैं, कोई बुद्धू पार्टधारी होते हैं, है? बहुत होशियार होते हैं तो हीरो पार्टधारी कहे जाते हैं, है ना। तो हीरो पाटदारी के द्वारा भगवान बाप जो रिहर्सल कराते हैं, इस सृष्टि का ज्ञान देते हैं पाटदारियों को, वो पाटदारी नंबर वार ज्ञान लेंगे या एक जैसा लेंगे? नंबर वार लेते हैं। नाम ही है उनका पात्र, क्या कहते हैं, पात्र नाम देते हैं, यानी उनका बुद्ध रूपी पात्र सबका एक जैसा है या छोटा बड़ा है? है छोटा बड़ा है। जिसका बुद्ध रूपी पात्र बहुत बड़ा है, बड़े से बड़ा, वो सची रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी कहा जाता है। उस हीरो पाटधारी के द्वारा सुप्रीम सोल बाप शिव निराकार सारी सृष्टि की आत्माओं को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्माओं के बाप स्वयं का ज्ञान देते हैं और इस सृष्टि रूपी रंगमंच के आदि मध्य और अंत का भी ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान लेने में जो आत्माएं भगवान बाप को पूरा पूरा पहचान लेती हैं, कैसी पहचान लेती हैं? पूरा पूरा माना निराकार बाप सो साकार बाप कैसे है, इस बात को जान लेती है। वो साकार बाप की पहचान करके, मान करके उसके नक्शे कदम पर चलती है। और बाप का नाम बाला करती है, ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची से ऊंची जेनरेशन में आ जाती हैं। 84 के चक्र में जो अव्वल नंबर जन्म की पीढ़ी है, उस पीढ़ी के भांति बन जाते हैं। ज्ञानसूरी के बच्चे बन जाते हैं और ज्ञानसूरी के ऐसे बच्चे बनते हैं वो आत्मा रूपी सितारे, जैसे आकाश के सितारे ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर उदय होता है तो वो सितारे अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। भी फर्म हो, दुकान हो, कारखाना हो, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या लिखते हैं? एंड सन्स कंपनी। सन्स का नाम भी नहीं देते, नाम किसका? बाप का नाम देते। वो अपने बाप की प्रत्यक्षता करते हैं, अपनी प्रत्यक्षता नहीं करते। वो हैं सूर्यवंशी बच्चे, ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच कुल वाले बच्चे। पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे सारे षष्ठी रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाले बच्चे, ज्यादा अनुभवी हुए या कम अनुभवी हुए? ज्यादा अनुभवी। उनके अलावा जो भी आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, बाप के घर से, आत्मलोक से, वो नंबर वार उतरने वाली आत्माएं कम जन्म लेंगी या सब 84 जन्म लेंगे? क्योंकि इस सृष्टि का ये नियम है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले जो पार्टधारी हैं, नए नए चोले लेकर के पार्ट बजाते हैं, वो रंगमंच पर नंबर वार आते हैं कि एक साथ आ जाते हैं? नंबर वार आते हैं। तो वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, कोई 83 जन्म लेती है, कोई 82 जन्म, उत्तरोत्तर कम जन्म लेने वाली होती है। आत्मलोक से सृष्टि पर उतरती ही रहती है। मतलब पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कम आबादी होती है और बाद में आबादी बढ़ती जाती है। हिस्ट्री उठा के देख लें, पहले दुनिया की पॉपुलेशन कम होती है और बाद में बढ़ती जाती है। मनुष्यों की ही नहीं, मनुष्य आत्माओं की ही बात नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे सबकी आत्माओं में वृद्धि होती जाती है या कम होते जाते हैं? है, वृद्धि होती जाती है। इससे क्या साबित होता है? ये आत्माएं इसी सृष्टि पर पहले मौजूद थी या कहीं बाहर से आ रही है? है? अगर इसी सृष्टि पर मौजूद होती तो पहले ही जनसंख्या बढ़ जाती। जरूर आत्माएं, ये जो लोक है सृष्टि, पांच तत्वों की सृष्टि, इस पांच तत्वों की सृष्टि से परे एक आत्मलोक है जहां आत्माओं का जखीरा रहता है आत्माओं के बाप के साथ, जिसका गीता में वर्णन है। भगवान बाप कहते हैं कि मेरा रहने का जो धाम है परमानेंट, वो सूरज चांद सितारों की दुनिया के प्रकाश से परे है। वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। अंग्रेज लोग भी उसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम अबोड कहते हैं, मुसलमान भी उसे अर्श कहते हैं। पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, खुदा फर्श में नहीं रहता। अभी तो सारी दुनिया अज्ञानी हो गई, तो क्या कहती है, है जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान। तो उस आत्मलोक से जो नंबरवार आत्माएं उतरती हैं बाद में सूर्यवंशियों के बाद, वो आत्माएं कम कम जन्म लेने वाली हैं। तो जो कम जन्म लेने वाली होंगी वो ज्यादा अनुभवी होंगी या कम अनुभवी होंगी? कम अनुभवी होती है, उनमें पावर भी कम होती है। कम पावर होने के कारण मन बुद्धि की शक्ति कम होने के कारण, या कहो उनका बुद्धि रूपी पात्र छोटा होता है। इसलिए जब भगवान बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति कम धारण कर पाती है, पात्र छोटा होगा, और कोई पात्र बड़ा होगा तो धारण करने की शक्ति एक जैसी होगी, है नहीं हो सकती। तो जो आत्माएं कम जन्म लेने वाली होती हैं, वो आत्माएं भले सतयुग त्रेता में भी आने वाली क्यों न हो, द्वापर युग में आते आते कमजोर हो जाती हैं, और उन कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। बात चल रही थी इब्राहिम की, उनके आधार मूर्त आत्मा की, आधार मूर्त जो देव आत्मा थी, और उस देव आत्मा को जन्म देने वाले इस्लाम धर्म के साकार बीज की, बीज तो कोई भी धर्म का हो, बीज ज्यादा पावरफुल होता है जड़ों के मुकाबले, तने के मुकाबले, टहनियों के मुकाबले, फल फूल के मुकाबले, या कम पावरफुल होता है। बीज में बहुत शक्ति होती है, बीज का नाश नहीं होता है। तो वो बीज रूप आत्माएं वो ही कही जाती हैं जो अपने को निराकारी बीज रूप आत्मिक स्टेज में पुरुषार्थ करके स्थिर कर लेती है, क्योंकि आत्माओं का बाप बीज रूप आत्मा, तो बाप के बच्चे भी आत्मा होने चाहिए कि नहीं है? आत्मिक स्टेज में जो अपन को बिंदु रूप स्टेज में निरंतर स्थिर कर लेते हैं, वो भगवान बाप की सारी शक्ति खींचते हैं नंबर वार। सूर्यवंशी बाप के सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। और भारतीय भाषा में शास्त्रों में कौन से देवता को सूर्यवंशी कहा गया है? राम को सूर्यवंशी कहा गया है। तो वो राम वाली आत्मा ही ज्ञान सूर्य का मुकर्रर आधार बनती है और उस ज्ञान सूर्य बाप को जो गीता में भी लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को देता हूं। जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है देने वाला असली सूर्य जो है वो तो निराकार है, आत्मा निराकार होती है साकार? आत्मा निराकार, निराकार आत्मा माता के गर्भ में साकार चोले में प्रवेश करती है तो निराकार सो क्या हो जाती है? साकार हो जाती। जब तक साकार न बने तब तक निराकार कोई भी आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। ऐसे ही जो सुप्रीम सोल बाप की आत्मा है वो भी इस सच रूपी रंगमंच पर जब तक साकार चोला धारण न करे कोई कार्य नहीं कर सकती। तो कहेंगे आत्मा है निराकार, आत्माओं का बाप है निराकार आत्मिक रूप में ज्ञान सूर्य जो कहता है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो ज्ञान सूर्य हुआ और उस ज्ञान सूर्य को पहचानने वाले बच्चे थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे थोड़े मुट्ठी भर बच्चे। इस 500-700 करोड़ की सृष्टि के मुकाबले बहुत थोड़े। पांच सौ सात सौ करोड़ का 100वां हिस्सा भी नहीं। अरे 1 करोड़ का 100वां हिस्सा भी नहीं। क्या 1 आसमान में जो सितारे हैं स्थूल सूर्य के आसपास चक्कर काटने वाले सितारे स्थूल सूर्य से स्थूल रोशनी वाले लेने वाले सितारे कितने गाए जाते हैं? 9 लाख सितारे गाए जाते हैं। और रानी के गले में जो हार गाया जाता है वो भी 9 लाख हार गाया जाता है। आसमान के सितारे हों वो भी 2 प्रकार के, एक सूर्य के प्रकाश में पलने वाले, दूसरे चंद्रमा के प्रकाश में पलने वाले। जो सूर्य के प्रकाश में पलने वाले हैं वो तो अपने को मर्ज कर देते हैं सूर्य में, और जो चंद्रमा के प्रकाश में पलने वाले हैं वो चंद्रमा के प्रकाश में अपने प्रकाश को मर्ज कर देते हैं कि संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, है अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते, जो राका पति कहा जाता है, राका माने रात, रात का पति कौन, चंद्रमा। उस चंद्रमा के गोद में पलने वाले वो सितारे उनका गायन नहीं है क्या? संसोज फादर, क्या वो अपने बाप चंद्रमा को प्रत्यक्ष करते हैं, है नहीं करते? वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। तो भगवान बाप जब आकर के रिहर्सल कराते हैं तो चंद्रमा की गोद में पलने वाले वो सितारे जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं वो बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, उन पोस्टर्स में अपने चेहरे छपाते हैं त्रिमूर्ति के रूप में, क्या देहधारियों के चेहरे, चेहरों की प्रत्यक्षता करते हैं। तो जो अपनी प्रत्यक्षता करते हैं और अपने को जन्म देने वाले बाप को भूल जाते हैं, वो नीची कोटि के कहें या ऊंची कोटि के कहें, है जैसे आज के बड़े बड़े धर्माधीश, बड़े बड़े राज्याधिकारी कोई भी देश के हों, कलयुगी हैं या ऊंचे युग के हैं, नीचे युग के नीचे पात्रधारी हैं, नीचे युग में आकर के उनको थोड़े समय के लिए गद्दी मिलती है, क्योंकि वो अपनी प्रत्यक्षता करने वाले हैं। आप देखो गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, चेहरे दिखाने वाले हैं कि नहीं है? पब्लिक का पैसा लेते हैं और अपने चेहरे छपाते हैं, अपनी प्रत्यक्षता कर रहे हैं, बाप को भूले हुए हैं या जानते हैं, है? ना अपनी आत्मा को जानते हैं, बड़े देहभान में रहते हैं, अपन को देह समझते हैं या देह को चलाने वाली आत्मा समझते हैं? देह समझते हैं, समझते हैं कि हम इस दुनिया को पैराडाइज बनाएंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत में राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य राम लाएगा? राजा का राज्य, राजा युद्ध करके अपना राज्य स्थापन करता है, कि कोई दूसरा करता है? राजा करता है, प्रजा का नाम होता है क्या? नहीं। तो देखो, ये देह अहंकार में रहने वाली दुनिया है, इस दुनिया में और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी ढेर के ढेर भरे पड़े। भगवान बाप जब आते हैं तो सभी धर्मों से चुनी हुई उन श्रेष्ठ देवात्माओं को चुनते हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, पहले भारतवासी थे, फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते गए, अंतिम 84वें जन्म में, कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि हर धर्म से चुनी हुई वो आत्माएं जो कभी देव आत्माएं थी, वो आत्माएं भारत में आकर के जन्म लेती है। जो अनेक जन्मों में कन्वर्ट होती गई हैं, उन भारतवासियों के कन्वर्ट होने से भारतीयों की संख्या कम हो गई और धर्म वालों की संख्या बढ़ गई। वो आत्माएं जब भारत में आके अंतिम जन्म में पहुंचती हैं, तो भगवान बाप जिन मनुष्य चोलों में नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं प्रवेश करके, उनमें अव्वल नंबर का चोला मुकर्रर रथ है और बाकी टेम्परेरी रथ। जो टेम्परेरी रथ हैं उन्हें भारत में ब्रह्मा के मुख कहा जाता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा या पंचमुखी ब्रह्मा। फिर कहते हैं जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, अल्लाह अव्वल दीन को पहचानते हैं और पहचान करके इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी के नक्शे कदम पर चलते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के चलते हैं, वो बच्चे कर्म की छोरी को गहराई से जानने वाले बनते हैं या कर्म की थ्योरी को न जानने वाले बच्चे बनते हैं? है? हाँ। भगवान की मत पर जो चलेंगे वो तो जन्म जन्मांतर ऊंचे ही बनेंगे, ज्यादा सुख भोगेंगे या कम सुख भोगेंगे? भगवान तो है सुख का सागर, तो अपने लाडले बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख देगा या कम सुख देगा? ज्यादा सुख देगा। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि तुम मेरे लाडले बच्चे इस सच्ची रूपी रंगमंच पर तीन हिस्सा सुख भोगते हो और एक चौथाई हिस्सा दुख भोगते हो। और धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है मुकर्रर रथ परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वो परम ब्रह्म को जो पूरा पहचानते हैं, पहचान करके उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी की मत पर चलते हैं जिसे कहते हैं श्रीमत, वो श्रीमत किसके द्वारा देता होगा? है, है? गीता माता के द्वारा श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। भगवान का गीत है वो गीता, उसके बच्चे भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। डायरेक्ट आए हुए भगवान बाप को पहचानते हैं, मानते हैं और उसकी मत पर प्रैक्टिकल जीवन में चलते भी हैं। कि 500 करोड़ भी चलेंगे है? नहीं चल सकते, क्योंकि उन 500 करोड़ में ढेर के ढेर भारतवासी तो ऐसे हैं जो पहचान ही नहीं पाते। प्रैक्टिकल साकार में आए हुए भगवान बाप को जब पहचानेंगे नहीं तो उसकी मत पर चलेंगे है? मत पर ही नहीं चलते, पूरा ज्ञान उठाते ही नहीं। और धर्म पिताओं को अपना बाप बना लेते हैं औरों की मत पर भी चलने लग पड़ते हैं, शूटिंग करते हैं। भगवान बाप आते हैं डायरेक्टर बनकर तो औरों की मत पर भी चलने की रिहर्सल करने लग पड़ते हैं। घड़े बनाए लेते हैं, पार्टियां बनाए लेते हैं, उन पार्टियों में कन्वर्ट होते रहते हैं और कन्वर्ट होकर के निंदा कराते हैं भगवान बाप की। उन आत्माओं के अंदर जन्म जन्मांतर के वो कन्वर्शन के संस्कार हैं कि और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत की निंदा कराते हैं, भारतवासियों को और भारत को धोखा देते हैं, क्योंकि खुद ही धोखे में आ जाते हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि आम भारतवासी इन भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है, देहधारी जो बात कहेंगे वो मानेंगे और निराकार भगवान बाप सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश हो करके जो बातें बोलते हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देते। देहधारी गुरुओं के पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए भगवान बाप को कहना पड़ता है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। मम्मा बाबा दोनों साकार हुए या निराकार है? साकार। कोई मम्मा के पीछे मरने वाले, कोई बाबा के पीछे मरने वाले मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अरे पूछेगा तो तब जब पहचानेगा। ढेर के ढेर ब्राह्मण बनते हैं। जब भगवान बाप आते हैं तो ब्राह्मण धर्म की रचना रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक अव्वल नंबर ब्रह्मा के फॉलोअर, जिसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, देवता धर्म की स्थापना की। मनुष्य से क्या बनाया? देवता बनाया। ऐसे मुट्ठी भर ब्राह्मण 500-700 करोड़ मनुष्यों में से चुने हुए 9 लाख ब्राह्मण, जिनमें आधे देवताओं की दुनिया बनाने में, बाप का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, बीज रूप आत्मा है, बाप समान बीज रूप। जैसे बाप ज्ञान सूर्य शिव आत्मा है, देवान का नाम निशान नहीं है, इस सृष्टि पर भी आता है तो आत्मा है या देवानी है? आत्मा है। ऐसे ही भगवान बाप के बच्चे इस सृष्टि पर रहते हुए भी अपन को क्या बना लेते हैं? है निरंतर याद में रह करके अपन को पक्का पक्का ज्योति बिंदु आत्मा बना लेते हैं, अर्थात आत्म की स्मृति में टिक जाते हैं। उनको कहेंगे बीज। इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज कौन? आत्मा। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हैं वो 4.5 लाख, और उनसे जो जन्म लेने वाले बच्चे बनते हैं नई सृष्टि में, बाप 16 कला संपूर्ण तो बच्चे भी 16 कला संपूर्ण, वो भी 4.5 लाख। इस तरह रचयिता के रूप में बीज रूप आत्मा है, और उनकी रचना के रूप में है बच्चों के रूप में जो जन्म लेते हैं नई दुनिया में वो 4.5 लाख। टोटल कितने हुए? 9 लाख आत्माएं हैं, जिनकी तुलना आसमान के सितारों से की जाती है। ये हैं धरती के चैतन्य सितारे 9 लाख, और वो हैं आसमान के जड़ सितारे 9 लाख। ये धरती के सितारे 9 लाख सतयुग के आज से लेकर के नंबर वार कलयुग के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रचयिता का पार्ट बजाते हैं या रचना का पार्ट बजाते हैं? रचयिता का पार्ट, पावरफुल पार्ट बजाते हैं। क्या सारे संसार की बीज रूपात्माएं हैं, बाकी जितने हैं कम जन्म लेने वाले वो उत्तरोत्तर कमजोर आत्माएं हैं। भले सतयुग के अगले जन्मों में देवताएं बनते हैं, सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है, लेकिन कलाएं तो कम होती जाती है ना, जन्म वाई जन्म। त्रेता के आदि तक पहुंचते पहुंचते 14 कला रह जाती है और त्रेता के अंत तक पहुंचते पहुंचते 8 कलाएं रह जाती है। तो कमजोर हो गई ना, है वो कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो गए? क्योंकि संगम युग में उन आत्माओं ने जो द्वापर से ही कमजोर होने लगती हैं, उन्होंने भगवान बाप को नहीं पहचाना कि एक ही भगवान है जो सच रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य आत्माओं को राजयोग सिखाता है। एक के सिवाय और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई भी धर्म पिता की आत्मा नहीं है जो राजयोग सिखा करके आत्मा का उद्धार कर सके। उद्धार माने उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाए। क्या आत्माओं को बलपूर्वक हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाए। तो उद्धार मुहूर्त आत्माएं कितनी हुई? 4.5 नंबर बार। और उन 4.5 लाख आत्माओं में जो नंबरवार उद्धार मूर्त हैं, अव्वल नंबर उद्धार मूर्त कौन हुआ? उत हर, उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाने वाला। अव्वल नंबर कौन हुआ है? जिसका चित्र झाड़ के ऊपर दिखाया गया है, वो है उद्धार मूर्त। ऊपर को हरण करके ले जाता है योग की शक्ति से। हरण करना अच्छी बात है, हरण करना अच्छी बात है या प्यार से ले जाना अच्छी बात है? तो जो हरण करके ले जाता है वो बलपूर्वक ले जाने वाला हुआ या प्यार से ले जाने वाला हुआ? बलपूर्वक ले जाने वाला हुआ। और भगवान कैसा होगा? प्यार से ले जाने वाला होगा। लेकिन प्यार किसको करेगा? एक जैसा प्यार करेगा सबको क्या? किसको प्यार करेगा, किसको छोड़ देगा? है अरे दुनिया में कोई भी बाप होते हैं, बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का बच्चा होगा तो बाप की दुकान संभालेगा या निठल्ला होके घर में बैठा रहेगा? है दुकान संभालेगा। तो भगवान भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच का मालिक है, ये सृष्टि रूपी दुकान है, उस दुकान को चलाने वाला जो बड़ा बच्चा होगा वो ज्यादा जिम्मेवार होगा या कम जिम्मेवार होगा? ज्यादा जिम्मेवार हो। फिर नंबर बार और भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? और भी नंबर बार हो। तो उनको कहा जाता है बाप के, सुप्रीम सोल बाप के सेवाधारी बच्चे, ईश्वरीय सेवा करने वाले। बाप किन बच्चों को प्यार करेगा, किनको याद करेगा? जो सेवाधारी बच्चे हैं उन बच्चों को बाप याद करता है। और याद करता है तो जिनको याद करेगा उनको पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनको वाइब्रेशन की बहुत पावर मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ईश्वरीय सेवा का खुशी रूपी मेवा मिलता है। वो खुशी इतना पारावार खुशी का चढ़ता है कि अतीन्द्रिय सुख में झूमने लगते हैं। कैसे सुख में? इंद्रियों के सुख की जरूरत ही नहीं रहती। बुद्ध रूपी आत्मा निहाल हो जाती है। बाकी जो बच्चे सुप्रीम सोल बाप की ईश्वरीय सेवा करते ही नहीं, क्योंकि बाप को प्रैक्टिकल में पहचानते ही नहीं, वो बच्चे नंबरवार होंगे या एक जैसे ब्राह्मण होंगे? नंबरवार ब्राह्मण कहे जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की नौकुरी विख्यात है, नौकुरियों के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कितने वर्ग में बांटे जाते हैं? नौ वर्ग में। नौ ही दुनिया के धर्म है, जो आस्तिक कहे जाते हैं। आस्तिक होने से भगवान बाप से राजयोग के द्वारा नंबरवार राजाई का वर्षा लेते हैं। वो नंबरवार राजाई का वर्षा लेने वाले बाप को पहचान करके बाप से शक्ति भरते होंगे या नहीं भरते होंगे? है भरते होंगे। तो जो अव्वल नंबर शक्ति भरते हैं वो है सूर्यवंशी बच्चे। थे सूर्यवंशी हैं 4.5 लाख। वो 4.5 लाख जो हैं वो डायरेक्ट बाप को साकार में पहचान करके साकार इंद्रियों के द्वारा, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इंद्रियों के द्वारा बाप से सुख का वर्षा लेते हैं। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद सुख का वर्षा देता है। एक जन्म का देता होगा या अनेक जन्मों का देता होगा? 21 जन्मों का तो पक्का वर्षा देता है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। बाकी 21 जन्मों के आधार पर अगले द्वापर युग और कलयुग के 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ऐसे भी मेरे बच्चे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो है ही सुख का सागर बाप। सुख के सागर में जो पूरा ही डूब जाएगा तो पूरा ही वर्षा लेगा या नहीं लेगा? बाकी तो मैं बपुरा बूढ़न मरा रहा किनारे बैठ, जो सागर की गहराइयों में जाकर के रतन निकाल के लाते हैं वो अच्छे, या जो गहराई में जाने से डरते हैं डूब मरेंगे? अरे ज्यादा गहराई में नहीं जाना ज्ञान की, अगर ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? डूब मरेंगे। तो डरपोक बच्चे हुए या निडर हुए? और डर देवान वालों को होता है जो अपन को देह समझते हैं, देह के मरने का डर होता है या आत्मा मरती है? है देह के मरने का डर होता है। तो जो देहवान ही रह जाते हैं पूरी आत्मिक स्थिति धारण नहीं करते, वो देहवान में रहने वाले 9 लाख के अलावा जितनी भी मनुष्य शक्ति है वो सारे ही क्या हैं? देहवानी आत्मा है। वो देहवान को पूरा नहीं त्याग पाते, इसलिए कम जन्म लेते हैं। जो पूरे देहवान को त्याग देते हैं पक्का बीज बन जाते हैं। तो बीज पक्का होगा तो झाड़ भी पूरे 84 जन्म लंबे समय तक ठहरने वाला होगा। बीज कमजोर होगा तो झाड़ भी कमजोर हो जाएगा, उसकी अवधि कम हो जाएगी। तो अब्राहिम का आधार मूर्त और उस आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज, जो बीज 4.5 लाख में से आता है, क्या कहा? दुनिया की बीज रूप आत्माएं कितनी हैं? 4.5 लाख। उन 4.5 लाख को ब्राह्मणों की 9 कुरियों में बांट दीजिए, क्योंकि 9 ही धर्म है आज तक दुनिया के, सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म क्रिश्चियन धर्म संन्यास धर्म मोहम्मद का मुस्लिम धर्म सिख धर्म आर्य समाज, कितने हुए? ये 9 ही हैं जो आस्तिक हैं कुछ न कुछ नंबर वार। आस्तिक हैं माने आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान से प्राप्ति कर लेते हैं नंबर वार। तो इनके बीज भी कैसे होंगे, नंबर वार होंगे कि एक जैसे होंगे? इसलिए उन बीजों में से पक्के पक्के राजयोगी छांटे जाते हैं जो भगवान के गले की माला बनते हैं, जिस माला के मणकों को बीजों को सारी दुनिया के सभी धर्म वाले स्मरण सिमिरण जरूर करते हैं। इस्लामी भी माला घुमाते हैं, बौद्धियों में भी माला घुमाई जाती है। क्रिश्चियंस में भी माला घुमाई जाती, सिखों में भी माला घुमाई जाती, सन्यासी भी माला घुमाते हैं। वो माला 108 मणकों की होती है, श्रेष्ठ सूर्यवंशियों की माला उन 108 को 9 में डिवाइड कर दो, 9 धर्मों में 12 12 के 9 ग्रुप हुए हुए ना, तो 9 ग्रुप के मुखिया होंगे या नहीं होंगे? है जो मुखिया होंगे वो अपने अपने धर्म के मुखिया हुए ना, नहीं है? तो इस्लाम धर्म की जो मुखिया आत्मा है, बीज रूप आत्मा, वो ही इब्राहिम के आधार मूर्त का बाप है, बीज है। उस बीज में जो कमी होगी वो कमी सारे झाड़ में जाएगी या नहीं जाएगी? वो कमी है विचार की। दुनिया का सबसे जास्ती इंद्रियों का सुख भोगने वाला विचारी धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा और वो आधार मूर्त आत्मा, भगवान बाप जब आते हैं तो इंद्रियों का व्यभिचार नहीं छोड़ पाती। क्या क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म का बीज बन जाती है द्वापर से, इस्लाम धर्म के आधार बन जाते हैं। जो बीज बनते हैं उनमें इस्लाम धर्म के व्यभिचार का छिलका चढ़ जाता है। बीज तो नष्ट नहीं होता लेकिन छिलका तो चढ़ता है। और जो आधार मूर्त होते हैं वो तो पूरे ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विचार का क्या छिलका चढ़ता है? है जो मूल चार धर्म हैं दुनिया के, देवता धर्म, इस्लामी धर्म, बौद्धि धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उनके बीज कितने होंगे? चार बीज हैं। वो चारों ही बीज नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? हैं एक बाप के बच्चे, फिर भी नंबरवार पावर लेने वाले हैं भगवान बाप से। तो नंबरवार पहचानने वाले होंगे या एक जैसा पहचानेंगे? जो अव्वल नंबर है, अल्लाह अव्वल दीन का बीज साकार, वो अव्वल नंबर में पहचानने वाला होगा और उसकी प्रजा भी, प्रा माने प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाले, उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी अव्वल नंबर में पहचानने वाले होंगे उस साकार मनुष्य शक्ति के बाप को या नहीं होंगे? अव्वल नंबर में पहचानने वाले। जो नहीं पहचानते हैं उनमें भी इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन में नंबरवार, इस्लाम धर्म वाले पहचानते तो हैं और दूसरे धर्मों के मुकाबले, विधर्मियों और विदेशियों के मुकाबले पहले पहचानते हैं इस्लाम धर्म के बीच। लेकिन फिर भी इंद्रियों से व्यभिचार में आसक्त हो जाते हैं, मन बुद्धि से व्यभिचारी आसक्त कहे जाते हैं, आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, बड़ा मोटा छिलका चढ़ जाता है देहभान का। तो जिनको देहभान का छिलका चढ़ा होगा वो भगवान बाप के साकार रूप को पहचानेंगे है? नहीं पहचान सकते। और जब तक नहीं पहचान सकते हैं तब तक उनकी शूटिंग खराब हो जाएगी या अच्छी बनेगी? खराब हो जाती है। तो चार सीन है ड्रामा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों ही सीन में जो बीजों की माला है, रुद्र माला जिसे कहते हैं, रुद्राक्ष, वो बीजों की माला सभी धर्मों की माला है ना, सभी धर्मों के बीज है ना, उनमें जो इस्लाम धर्म का वो मूल बीज है और उसके साथ साथ जो भी दूसरे धर्मों के मूल बीज हैं, तीन, क्या, इस्लामियों का बीज, बौद्धियों का बीज और क्रिश्चियंस का बीज, वो भगवान बाप को उस शूटिंग पीरियड में पूरा नहीं पहचान पाते। न पहचानने के कारण विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? विरोध करते हैं। तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? बाप से पूरी शक्ति लेंगे या शक्ति लेने से वंचित हो जाएंगे? वंचित हो जाते हैं। वही बीज और वही आधार मूर्त आत्माएं द्वापर युग में आते आते दृष्टि के विचार से संगम युग में ही कमजोर बन जाती है और सतयुग में कम कला की देवता बनते हैं। सेकंड नारायण और सेकंड नारायण का बीज वो आत्माएं द्वापर में आते आते दृष्टि का सुख ज्यादा भोगेंगे ज्ञान इंद्रियों का या कम भोगेंगे? शूटिंग कैसी की? शूटिंग पीरियड में इंद्रियों का व्यभिचार ज्यादा किया या कम किया? ज्यादा किया। एक भगवान बाप से तो दृष्टि नहीं ले पाए विरोधी होने के कारण, तो द्वापर युग से वो बहुत कमजोर बन जाते हैं और धर्म वालों के मुकाबले भी जास्ती कमजोर बनते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म के मूल कहे जाते हैं, आधार कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म की जड़ माता आधारभूत और इस्लाम धर्म का बीज साकार बाप, उनकी कमजोरी ऊपर से आने वाला जो धर्म पिता जब प्रवेश करता है तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? एक ही भगवान बाप सुप्रीम सोल है जिसको अपनी देह है ही नहीं, अपनी इंद्रियां है ही नहीं, तो उसको संग का रंग भी नहीं लगता। बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, सबको संग का रंग लगता है और संग के रंग से नीचे गिरती है। वो धर्म पिताएं भी ऊपर से जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनके संग का रंग लगता है। नीच में प्रवेश करते हैं या ऊंच में प्रवेश करते हैं, है कमजोर में प्रवेश करते हैं कि पावरफुल में प्रवेश करते हैं, है कमजोर में प्रवेश करते हैं, कमजोर का संग का रंग लेते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो उनकी आत्मा तीव्रता से नीचे गिर जाती है, पतित बन जाती है और उनको गर्भ का जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म सुख भोगते हैं, बाकी बाद में जितने भी जन्म लेते हैं क्या भोगते हैं? दुख भी भोगते हैं। जितना ज्यादा ज्यादा इंद्रियों का सुख लेते जाते हैं उतना ज्यादा ज्यादा दुख भोगते हैं, उनके फॉलोअर्स भी इसी तरह दुख भोगते हैं। तो ये हिसाब है क्या कि भारतवासी वो देवात्माएं और धर्मों में क्यों कन्वर्ट होती गई? पता चला है? नहीं पता चला है? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले हैं वो कन्वर्ट नहीं होते, बाकी जो भी चार ब्रह्म हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, उनकी गोद में खेलने वाले, उनको फॉलो करने वाले सभी नंबर दो के, नंबर तीन थर्ड क्लास, नंबर फोर फोर्थ क्लास ब्राह्मण बनते हैं। और भगवान बाप को न पहचानने के कारण पूरा सुख शांति का वर्षा नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो नहीं, क्योंकि वो सब आधार मूर्त आत्माएं बनते हैं। माता की कहता तरीके हैं, मात्र देश के कहे जाते हैं। माताओं में ये टेंडेंसी होती है क्या है? क्या टेंडेंसी? बरगलाने में आने की, कोई की बात को मान लेंगे, जो सुनी सुनाई बात है उसको मान लेंगे। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ओम शांति।